वाद संवाद FM गोल्ड के श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की महानिदेशक डॉक्टर वंदना कुमार के साथ पत्रकार उर्मी गोस्वामी की बातचीत।
इस साल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल या NPC उसकी 60 साल पूरी हुई है। इसकी डायमंड जुबली है। वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवसर होता है और उत्पादकता सप्ताह का जो थीम है वो है इंडस्ट्री 4.0 लीफ्रॉग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। वंदना जी, भारतीय उद्योग कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उसके क्या क्या अवसर हैं आगे बढ़ने के लिए?
नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है उत्पादकता के क्षेत्र में तो काम कर ही रहा है। हमारी उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कम्पेटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा। आप किस तरीके से अपने उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं, उसकी तरफ प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता सबसे पहला कदम है। आज इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज जो की हैं, जो कि चिन्हित की जाती हैं डिजिटाइजेशन से, इंटरकनेक्टिविटी से, अक्रॉस वैल्यू चेन्स और नए नए आयाम, नए बिजनेस मॉडल्स से जो चिन्हित की जाती है, ये बहुत खास हो गई है। इसलिए हमें लगा जो हमारा एक बहुत खास अवसर है, हमारी 60वीं वर्षगांठ है, हम उस पर इन विषयों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। इस सप्ताह जो हमने काम किए हैं, कुछ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, या हमारे 13 रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं जो कि देश भर में काम कर रहे हैं, और हमारे पास प्रोडक्टिविटी काउंसिल्स हैं देश भर में करीब 25 हैं, और नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इन सब के साथ मिलके हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं जो कि इस विषय पर केंद्रित हैं।
आप उत्पादकता की बात कर रही हैं और हम जिस समय से गुजर रहे हैं उसमें एक सतत विकास की बात बहुत होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे देश में अभी भी विकास का बहुत लंबा रास्ता आगे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत अहम रखती है, क्योंकि बाकी जैसे इश्यूज हैं जो हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं या जलवायु परिवर्तन, ये सब हो रहे हैं, उस उत्पादकता पर या उद्योग के जो प्लान्स हैं उस पर बहुत इम्पैक्ट भी होता है। एक साइड आप बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0 जो मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन पर निर्भर है, दूसरे और हम बात कर रहे हैं देश के विकास की, कि लोगों को और आय मिले, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करें। पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो है एनवायरमेंटल, जो बाउंड्रीज हैं वो पार हो रही हैं, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो आगे आ रही हैं। ये जो आपका थीम है या फोकस है, उसको कैसे, ये जो समस्या है वो आप तो उन समस्या से पीछे नहीं हट सकती, आप तो बोल नहीं सकती कि ये समस्या नहीं है। वंदना जी, इस समस्या को कैसे आप टैकल कर रहे हैं, आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप उत्पादकता बढ़ाने की जो फोकस है उसका हर पहलू पर डील करते हैं।
मुझे इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई देता। दूसरा ये कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री को एक इंजन ऑफ ग्रोथ बनाने के लिए। हमारे जैसे इनिशिएटिव्स हुए मेक इन इंडिया, उसके साथ में कई सारी जुड़ी हुई जो पॉलिसीज हैं, FDI पॉलिसी की लिबरलाइजेशन है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ पहल की गई हैं, ये सब कड़ियां और ग्लोबल वैल्यू चेन के इंटीग्रेशन के लिए इंडस्ट्री 4.0 एक जरिया है। चाहे वो ग्रोथ बढ़ाना हो और उसे सस्टेन करना हो, ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ हमारी यंग नेशन है हम, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसकी ये मांग है कि हमारे जो युवा वर्ग है उसको नौकरी मिलती रहे। जो सेक्टर्स जिस पर जरूरत होगी जॉब्स की वो रहेगी, जैसे हमारे पास लेदर सेक्टर है, टेक्सटाइल्स है, एपरल्स है, पेपर है, ये सब सेक्टर्स इस तरीके के हैं जहां पर लेबर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। आपके इंडस्ट्री 4.0 सेक्टर्स अगर आप विश्व में देखें तो वो ज्यादातर जुड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ऑटोमोटिव सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, उन सब से जुड़े हैं। ये टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच है जो कि हमें रखना ही होगा, और दोनों एक पैरेलल स्ट्रैंड्स है। जो जरूरत होगी वो होगी स्किलिंग और रीस्किलिंग की, सो दैट आप ये दोनों आयामों को पूरी तरीके से लेवरेज कर सकें।
एक तो है इंडस्ट्री खुद में खुद सस्टेनेबल, और आपने ऐसे दो पहलू की बात की जो इंडस्ट्री 4.0 मतलब जहां मौजूद है, मतलब डिजिटाइजेशन, मैकेनाइजेशन और जो लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब दो अलग ट्रैक्स हैं, उस हिसाब से आपने समझाया। अब हर उद्योग के लिए आज से 10 साल पहले भी उनको सोचना नहीं पड़ता था कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, कैसे और एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि रिसोर्स एफिशिएंसी अब बहुत अहम मुद्दा बन गया है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और खास करके हमारे जैसे जहां अभी भी हमारी जो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है। ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है वो इस पहलू में उसका भी रोल चेंज होता हुआ होगा, और कैसे ये जो नई रियलिटी है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स एफिशिएंसी अहम मुद्दे हैं, उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, और जो थीम है आपका इंडस्ट्री 4.0 जो अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपको रिसोर्स एफिशिएंसी में हमारे उद्योग के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है?
और भी आपको ये जान के खुशी होगी कि एनपीसी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है हमारी, उसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहम हमारे डिविजन्स है और हमारे काम का एक अहम हिस्सा है। हम वेस्ट मिनिमाइजेशन, रिसोर्स एफिशिएंसी पर बहुत काम करते हैं, न केवल हम खुद करते हैं, हम जैसे एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इन सब से भी जुड़ करके भी बहुत काम करते हैं। हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि सर्कुलर इकोनॉमी पे बेस्ड हैं, जो कि हरित उत्पादकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको शायद जानकारी हो, हमने नामक्कल, एक तमिलनाडु में छोटा शहर है, जहां पर ISO 14000 सर्टिफिकेशन हमने एनपीसी ने मदद की है उनको दिलवाने के लिए। हमने कई से क्लीन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स किए हैं टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में, पेस्टिसाइड के क्षेत्र में, पल्प एंड पेपर सेक्टर के क्षेत्र में। जैसे हमने कहा, ऊर्जा दक्षता हमारा बहुत बड़ा एक अहम पहलू है जिस पर हम काम करते हैं। हमारा एक सेंटर है जिसपे सारा काम, जिसका केंद्रित है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग इन एनर्जी एफिशिएंसी, तमिलनाडु में है। यहां पर भी हम काम करते हैं, हम एनर्जी ऑडिटर्स को सर्टिफाई करते हैं, करीब 15,000 एनर्जी ऑडिटर्स हमने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर सर्टिफाई किए हैं, जिनका ध्यान केवल इन्हीं बातों पर केंद्रित है। न केवल ये सब, हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ भी मिलकर के काम करते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के काम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस पे काम करते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है काम करने का।
ये तो जान के खुशी हुई कि जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है, आज के जो सबसे अहम मुद्दे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद बोले हैं कि क्लाइमेट चेंज उन मुद्दों में से हैं जो सबसे अहम है दुनिया के लिए, तो उस पर काम कर रही है। जो हमारे छोटे उद्योग हैं, जिसको हम MSME सेक्टर बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, अब ये माइक्रो स्मॉल जो है वो कभी कभी ऐसे होते हैं कि एक फैमिली का कोई आदमी है, वही CEO है, वही CFO है, वही CTO है, उसके लिए संभव नहीं होता है कि वो गूगल करे या 10 लोगों से पूछ के वो नए जो सिस्टम्स हैं जो ज्यादा रिसोर्स एफिशियंट हो या ज्यादा जिसमें प्रदूषण कम हो, जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट वाले उन्होंने जो मोटो दिया है, मतलब वो जो तकनीक है वो अडॉप्ट करना उनके लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि कभी उनको कोई आइडिया ही नहीं होता, उनको वो ज्ञान ही नहीं होता, और दूसरा है कि कभी उनके लिए वो खर्च इतना होता है कि वो अकेले नहीं कर पाते। पर इससे उत्पादकता पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो परिषद है, जो एनपीसी है, वो MSMEs को कैसे मदद कर सकती है और क्या मदद देती भी है?
MSMEs हमारे लिए बहुत अहम है। करीब 45% जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो MSMEs से आती है, करीब 30 से 40% जो हमारा निर्यात होता है वो भी MSMEs से आता है, लेकिन MSMEs के पास अक्सर, जैसे हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी और कैपिटल दोनों का एक्सेस ज्यादा नहीं रहता है। एनपीसी जो है इसको काम करने के लिए कई सारे कदम उठा रही है। एक तो हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर्स हैं, कई सौ क्लस्टर्स हैं जिसमें जो लीन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें वेस्ट रिडक्शन है, मिनिमाइजेशन है, रिसोर्स एफिशिएंसी है, उनके कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। काइजन के कॉन्सेप्ट्स पे काम करी है, 5S का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, उन पर भी काम कर रही है। इन सब MSMEs के साथ मिलकर कई क्लस्टर्स में काम हो रहा है। दूसरा, हम एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंडस्ट्री 4.0 भी बनाने जा रहे हैं, जिस पे हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और हम एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वहां काम कर रहे हैं, जहां पर हम MSMEs को लाएंगे, दिखाएंगे कि हम किस तरीके से ये टेक्नोलॉजीज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी फ्रूगलाइजेशन पे भी हम काम कर रहे हैं, ताकि वो जो तकनीक है उनके लिए अफोर्डेबल हो सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। बहुत सारे काम इस दिशा में है, पर वो थोड़े से अभी अर्ली स्टेजेस पर है इस समय। जब ये सेंटर हो जाएगा, हमारे पास टूल किट्स और होंगे, ये हम पायलट बेसिस पर भी MSMEs में काम कर सकेंगे, और हम इंडस्ट्री 4.0 के बारे में इनको।
पर आप ये मानती हैं कि ये सेगमेंट बहुत अहम है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं कि उद्योग बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, तो जैसे आप बोल रहे हो 45% इसी MSME के सेक्टर से आता है, तो यही सेक्टर बढ़ेगी। इनको अगर हम रिसोर्स एफिशियंट या सस्टेनेबल नहीं बनाए तो उनके उत्पादकता पर असर पड़ता है। इसका एक दूसरा पहलू है युवाओं को नौकरियां हो, तो यही एक सेक्टर है जहां नौकरियां बढ़ेंगी बनेंगी। एक सवाल उठाया जाता है कि लोगों के पास वो स्किल्स नहीं होते, वो सही ट्रेनिंग नहीं होते। हम ग्रीन जॉब्स की बात कर रहे हैं, हम एक नए तकनीक की बात कर रहे हैं, किसी किसी सेक्टर्स में तो हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन का मतलब तो ये नहीं कि लोगों की नौकरी नहीं होगी, नौकरियां कैरेक्टर बदल जाए, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग की बात होगी। तो ये जो ट्रेनिंग और स्किल, ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और NPC का क्या योगदान है इसमें समस्या को हल करने के लिए?
स्किल डेवलपमेंट सबसे बड़ी जरूरत है जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। देश में कई काम हो रहे हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। NPC की बात करूं स्पेसिफिकली, तो हमारे कई सारे प्रोग्राम है, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एक कोर एरिया है जिस पर NPC काम करती है, और हम साल में कई सौ कोर्स करते हैं NPC में, हमारे रीजनल डायरेक्टरेट्स में और कंपनीज में और स्टेट गवर्नमेंट्स और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलजुल करके करते हैं। एक हम प्रोग्राम रन करते हैं जिसे हम कहते हैं नेशनल 5S सर्टिफिकेशन। 5S का मतलब सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को और एफिशिएंट बनाने का काम करते हैं। दूसरा, हमने अभी हाल में एक काम शुरू किया है जो हम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से मिलकर के करते हैं, जिसमें कि हम जो AICTE के यंग स्टूडेंट्स हैं उनको हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज दे रहे हैं। तीसरा, हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट्स पर बहुत काम कर रहे हैं। चौथा, हम जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट को लेकर के भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं।
ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की 60 साल पूरी हो गई, और 60 साल में पूरा जो अप्रोच रहा है मैन्युफैक्चरिंग पर वो बदली है। जैसे हमने पहले भी बात की, रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे। हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जैसे रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस की जो बात है वो होती है इनफॉर्मल सेक्टर में। पर अगर हमें इस देश के उद्योग की उत्पादकता बढ़ानी है, एक तो इनकी फॉर्मलाइजेशन जरूरत पड़ती है। ये जो चेंज हो रहा है इन द फॉर्म इन व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्टिविटी, आपको क्या लगता है कि आज से अगले 10 साल के लिए क्या क्या फोकस एरियाज होंगे?
प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट विल रिमेन द फर्स्ट थिंग दैट NPC नीड्स टू डू। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इज द सेकेंड। उसको हमें टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाना होगा। MSMEs के द्वारा हमारा जो बाकी बड़ा उद्योग है वो काफी हद तक सक्षम भी है, लेकिन उसको और आगे ले जाना होगा। कनेक्टेडनेस बहुत जरूरी हो जाएगी। आज की डेट में अगर आपकी जो उत्पादकता है वो डिटरमिन होती है कि आपकी फैक्ट्री कितनी कम्पेटिटिव या प्रोडक्टिव है, आगे जाके आपको पूरी वैल्यू चेन पर फोकस करना पड़ेगा। तो कम्पेटिटिवनेस ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन, ये बहुत जरूरी होगा। और दूसरा जो है सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूजन, ये और बड़े पहलू रहेंगे हमारे लिए।
वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
अभी आप राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की महानिदेशक डॉक्टर वंदना कुमार के साथ पत्रकार उर्मी गोस्वामी की बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम एक और मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।